السلام علیکم خواتین و حضرات، آج یکم نومبر سن 2008، گپ شپ کی تازہ ترین قسط لے کر کے طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے سامعین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ہفتہ یا دو ہفتے اللہ نے چاہا تو بہت اچھے گزرے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پہلے پروگرام کو جو پذیرائی ملی، بہت سی ای میلز آئیں، بہت سے لوگوں نے شکریہ ادا کیا، بہت سے لوگوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ان کے علم میں اضافہ ہوا۔ ہمارا اس پروگرام میں جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کمیونٹی کے اندر، جنرل کمیونٹی کے اندر کچھ ایریاز کے بارے میں علم میں ان کے اضافہ کیا جائے تاکہ ان کے مستقبل میں، ان کی پروفیشنل لائف میں یا ان کی ذاتی زندگی کے اندر اس سے ہم کچھ فائدہ پہنچا سکے، اس تعلیم سے ان کو کچھ فائدہ پہنچ سکے۔ جیسا کہ پہلا پروگرام آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارا فائنانشل ٹرمائل کے بارے میں تھا، جو دنیا میں ایک معاشی بحران چل رہا ہے اس کے بارے میں تھا۔ سامعین آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ وہ بھی آج کا پروگرام جو ہے ہم جس موضوع پہ کر رہے ہیں وہ ہے کہ ایک سپر مارکیٹ یا ہائپر مارکیٹ کیا ہوتی ہے، اس کا بزنس کیسے کیا جاتا ہے، اس کے اندر کون کون سی مشکلات ہو سکتی ہیں، اس کی مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس کی چین سپلائی مینجمنٹ کیا کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، پرائسنگ، مارک اپس، فرنچائز، ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم کچھ نہ کچھ جانیں گے اپنے اس ایک گھنٹے کے پروگرام میں۔ اس دوران میں وقت ملنے پہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کی پسند کی ایک دو نغمے بھی آپ کو سنائیں گے اور ساتھ میں آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے۔ کانٹیکٹ پاکستان کی جانب سے میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی کے ممبر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں سفر میں، کہ جس میں ہم سب متحد ہیں اور سب ایک ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور آپ سے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی تو زامین، جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو ون میں، آر سی پی اسٹوڈیو ون میں ہمارے ساتھ ہیں وہ مہمان جو کہ انڈسٹری ایکسپرٹ ہیں۔ بیسیکلی آج آپ کے ساتھ جس موضوع پہ جو بات کریں گے وہ ہیں ہمارے محمود طارق بھائی۔ محمود طارق بھائی دنیا کے ایک انٹرنیشنل جو سپر مارکیٹ چین ہے اس میں مینجمنٹ میں ہیں اور اسٹور مینجمنٹ میں، اینڈ ہی ہیز بہائنڈ ہم مور دین 25 ایئرز آف ایکسپیرینس آف دس بزنس۔ یہ ہمیں آج بتائیں گے وہ تمام باتیں کہ جو کہ ہر وہ آدمی جاننا چاہے گا، کہ جس کو ایک تو ایک جنرل نالج کا شوق ہے وہ جاننا چاہتا ہے کسی ایک انڈسٹری کے بارے میں بہت، اور دوسرے وہ لوگ کے جو کہ سیریسلی یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ اس ملک میں، اس ریجن میں یا پاکستان میں کبھی وہ سپر مارکیٹ یا ہائپر سٹور کا کوئی کام کریں۔ تو آئیے آپ کا ہم تعارف کرواتے ہیں۔ میں طارق بھائی کے بارے میں خود پہلے کچھ کہنا چاہوں گا کہ طارق بھائی ہمارے بیسیکلی کانٹیکٹ پاکستان کے ایسے کے ایونٹ مینیجر ہیں اور ہمارے جو فزیکل ایونٹس یہاں پہ جتنے بھی ہوتے ہیں، ہی از دا پرسن ہو از ریسپانسبل فار سکسیس اور اس فیلئر، لیکن الحمد للہ وی آلویز ہیڈ اے میگا سکسیس۔ طارق بھائی السلام علیکم۔
السلام علیکم طاہر بھائی، شکریہ آپ نے، بڑا میں کہتا ہوں یہ میری، یہ اٹس این آنر فار می، آپ نے مجھے اس سیگمنٹ میں، آپ کی جو ہے اس میں مدعو کیا ہے، اور میں کانٹیکٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو اور آپ کو اس اچھی کاوش پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس کوششوں سے آپ کے سننے والے ہمارے ممبرز انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نالج لے کے نکلیں گے۔
اچھا طارق بھائی، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کو کریں، لیٹس ٹاک ا بٹ اباؤٹ دا پروگرام، ہاؤ وی ول ہیو اٹ۔ ہم بیسیکلی ایک تو خود میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور میرے سوال وہی ہوں گے جو کہ کامن آدمی کے ہو سکتے ہیں، یعنی میں نہیں جانتا، میں وہ چیزیں جاننا چاہوں گا۔ دوسرا، ہم اگر آج ہمیں ہمارے ممبران کی کالز آتی ہیں تو کالز بھی ہم لیں گے۔ کالز کے بارے میں یہ ہے، کیونکہ اس کا الرٹ ہم نے 24 گھنٹے سے لیس ٹائم میں بھیجا ہے، تو وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ ا لاٹ آف رسپانس، بٹ لیٹس ہوپ کہ کچھ لوگ ہیں جن تک ہمارا یہ الرٹ پہنچا اور وہ کال کریں اور ہمارے سے اس آپ سے جو بھی ان کے کوئی اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ کوشچنز ہوں اس پہ وہ جو ہے بات کریں گے، ہم لوگ ان کے جواب آپ سے لیں گے۔ دوسری ایک جو بات ہے، آبویسلی آپ ہمارے مہمان ہیں تو آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں एक दो अच्छी सी गुंडा में गजलें जो सी बताएं जो कि हम आपके लिए प्ले करेंगे और लेट्स हैव फन।
जी जी बिल्कुल।
तारिक भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें पहले, आप मतलब क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कब से कर रहे हैं और कब तक करने का इरादा है?
बिल्कुल तारिक भाई, ये एक कह लें ये इंस्टिंक्ट होती है, मुझे शुरू से ही बिजनेस का शौक था और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे एक ऑफिस में जॉब मिली, लेकिन चूंकि मैं एक मेरा वो शौक और एक जो था एक उमंग थी कि मैं कुछ ना कुछ बनूं जिंदगी में, और वो उसी सूरत में पॉसिबल था कि जब मैं ट्रेड में इन एक्शन, जहाँ पे एक्शन हो ज्यादा से ज्यादा, डिसीजन मेकिंग हो और उसकी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों और लाइबिलिटीज हों और आप प्रोड्यूस करें, अचीव करें और उसके बाद आपको फख्र हो, तो ये सारी चीजें मुझे ऑफिस एनवायरमेंट में नहीं मिल सकती थी। तो कंपनी ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, ये कोई 1980 की बात है, सेफवे में हमें अप्रोच किया। उस वक्त सऊदी अरेबिया अपने वो बूम टाइम पे था, ऑयल जो रिसेशन जो शॉर्ट टाइम पे आया था निकल के, वो इसी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और नए नए प्रोजेक्ट आ रहे थे और आपको पता ही है उस जमाने में वेस्टर्न रीजन में और ईस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा वेस्टर्न थे और उनको उस तरह की उनकी अपनी एक लाइफस्टाइल होता है, शॉपिंग हैबिट्स होती हैं। तो फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि अभी इस मार्केट में एक ए क्लास वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल सुपरमार्केट की एक गुंजाइश है। तो जब हमने फिजिबिलिटी बनाई तो हम हैरान रह गए कि ये तो इसमें तो एक पूरी पूरी चेंज आ सकती है। और अब आपने देखा होगा कि एक इन्फ्लक्स आया है मशरूम्स की तरह पे, हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स जो हैं वो खुली हैं और ये इंडस्ट्री ने बड़े तेजी से ग्रो किया है। मुझे वो इसमें अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कोशिश थोड़ी सी की तो मुझे उन्होंने इस पे तरफ डाल दिया। तो मैं फिर कह लें कि सेफवे के पायनियर्स जिन्होंने ये सारा मैनेजमेंट से लेके बनाने पे सीखा और करा, और डेफिनेटली मैं शुक्रगुजार हूँ मतलब सऊदी अरेबिया और गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के लिए, एक्सपेक्ट्स के लिए भी दी कि हमने यहाँ पे आप, जो टैलेंट होता है आपका उसको अपॉर्चुनिटीज अगर ना मिले।
सही तरफ भाई, इसमें पहली बात तो ये कि सेफ पे सामीन को थोड़ा बता दूं कि सेफ पे अब उसको तमीमी सेफ पे के नाम से जाना जाता है और बेसिकली फॉर्मुला ट्रंक तरफ भाई, दिस इज अ क्लास ऑफ इट्स ओन, मतलब ये एक वर्ल्ड क्लास की एक मतलब अगर कैटेगरी वाइज आप कह लें, मतलब मैं कहूँ जिस स्टार्स के हिसाब से तो इस फाइव स्टार सुपरमार्केट चेन है ये और दुनिया की सबसे बड़ी मेरे ख्याल में चेन है। ठीक है जी। और इनका यहाँ पे जो आने का मकसद, जैसे आपने कहा कि वेस्टर्नर्स था, तो ऑब्वियसली सेफ तमीमी जो है इनिशियली मैं जानता हूँ कि लोग वही विजिट करते थे कि जिन्होंने वेस्टर्न इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फूड्स आपने बनाने होते थे।
बिल्कुल।
तो उस वजह से इसका था कि जो आपको, जो आप अगर केक बना रहे हैं, मुझे याद है आपकी भाभी जब केक शुरू में बनाती थी तो कोई अगर उनको कोई ऐसी चीज चाहिए होती थी कि जो कि वो ले रही थी किसी बुक में से कि जो इंग्लैंड की है या अमेरिका की है, तो माफ कीजिएगा, तो वो अमूमन सेफे से जाकर के वो चीजें लाती थी और टीम उनको मिला करती थी।
बिल्कुल ऐसे।
मुझे भी याद है कि जब मैं टिक्के बनाता था तो ट्रेंडाइजर जो है वो सिर्फ सेफे में मिला करता था और आम बकाला या ग्रोसरी शॉप को इसके बारे में मालूम ही नहीं होता था। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि सेफे तमीमी ने भी इस, जहाँ पे इस मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, वहां पे इसके कल्चर में भी कंट्रीब्यूट किया है।
बिल्कुल।
अवेयरनेस, तालीम, नई चीजों का पता चलना, तो ये एक एक, एक मैं समझता हूँ कि एक सोशल जिम्मेदारी होती है किसी बिजनेस की, और वो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली सेफे ने पूरी की है कि दे हैव फिल्ड अप दैट स्पॉट वेयर बिजनेस वॉज रिक्वायर्ड, कि जो वेस्टर्न जो इंग्रीडियंट्स हैं उसको लेके आए, लोगों उसके बारे में पता चले कि ये क्या होते हैं। वनीला पाउडर तो सब इस्तेमाल करते हैं, एसेंस उसका वनीला की जो है वो उसकी एक्चुअल वनीला ला करके यहाँ पे बेचना, तो ये दिस इज क्रेडिट गोज टू डेफिनेटली सेफे। चलते हैं इस बिजनेस की जाने। तारिक भाई ऐसे है, पैसे हैं, मैं वापस जा रहा हूँ और मेरे दिल में एक बड़ा है कि मैंने यार सेफे का बिजनेस देखा है, अगर इस तरह से कोई बिजनेस किया है तो ये बिजनेस कामयाब हो सकता है।
जी जी।
सिविलाइज तरीका है एक ग्रोसर का, एक ग्रोसरी शॉप का, हाईटेक है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें, बंदे भी काफी काम करते हैं, मतलब जैसे सेफे में है या किसी और सुपरमार्केट में। मुझे ये बताइए कि बिजनेस के तौर पे इन जनरल एक आदमी, अगर हम अभी इस वक्त बात नहीं है करते कि जी कितना बड़ा कोई बिजनेस करना चाहता है, वो एक रुपए से करना चाहता है, दस रुपए से करना चाहता है, लाख रुपए से, फंडामेंटली इज इट अ गुड लाइन ऑफ बिजनेस फॉर someone who is not, बेसिकली बिजनेस पर्सन, उसने सारी उम्र में यहाँ रह करके इंजीनियरिंग की, पैसे डोड़े वापस गया, उसने कहा यार मैं अब नौकरी नहीं कर सकता तो मैं क्यों ना यार एक अच्छी सी मैं एक एक, एक शोरूम एक मैं सुपर मार्केट बना लेता हूँ। कैसा है बिजनेस के हवाले से ये
आपका? जी ये जो सवाल है बड़ा कम्प्रीहेंसिव है और मल्टीफेसेट है और इसमें तकरीबन एक एक ये आइडिया से लेके जरूरत से लेके इसके चलने तक के सारे पहलू आपने इसमें माशाल्लाह कवर किए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्टली जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा। और अर्ज ये है ताहिर भाई के जितनी भी हमारी जो डिस्कशन है ये इसमें कोई नई चीज शायद ना हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि इसमें इस डिस्कशन से जो फायदा होगा वो ये होगा कि बहुत सारी चीजों का हमें पता होता है और जब ये एक डिस्कशन में आती हैं तो बहुत सारे आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, रिमाइंडर हो जाता है और फिर उसके पहलुओं का और उसकी अहमियत का पता चलता है।
लेकिन मैं इसको दूसरे लफ्जों में मैं तारीख में ऐसे कहूंगा कि बिजनेस करना तो सभी जानते हैं, उसकी साइंस जानना, उसको उस किसी भी बिजनेस को करने का सही तरीका क्या है
जी,
वो डेफिनेटली काउंट करता है।
बिल्कुल,
हर आदमी समझता है कि उसने अगर उसने एक सुपर मार्केट बनानी है उसमें एक बड़ी सी दुकान चाहिए, फिर उसको बहुत सा सामान चाहिए, शेल्फ चाहिए जिसके अंदर लगेगा, फिर एक दो चार कैमरे लगाने पड़ेंगे, फिर चेकर्स चाहिए जो कि जहां पे लोग पैसे देंगे, फिर एक पैकर चाहिए जो बैग डालेगा, बैग में सामान डालेगा, सब चीजें सब समझते हैं। लेकिन जब तक आप उसके बैक ऑफिस में जाकर के जाने नहीं कि सब प्रोसेस होता कैसे है, क्या तरीका कार है, क्या बेसिक्स हैं जो कि वन शुड फॉलो, उस वक्त उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जितना मर्जी पैसा।
बिल्कुल,
तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उन बेसिक्स पे आप हमें बताएं कि अगर मैं एक सुपर मार्केट बनाना चाहता हूँ तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या चीजें हैं जिसको देखना पड़ेगा।
आप ताहिर भाई इसको इस तरह से ले लें कि अगर आप थोड़े से लुक अराउंड यू, कितने लोग जो हैं वो बिजनेस शुरू करते हैं और सक्सेस और फेलियर रेट जो है वो क्या है, तो ऑब्वियसली वो जो लोग सक्सेसफुल हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने अपना होमवर्क किया होता है। किसी भी बिजनेस, रिटेल हो, कंपनी हो, एंटरप्राइज किसी भी किस्म की हो, उसको शुरू करने से पहले आपको उसका बेसिक नॉलेज जैसे आपने कहा है वो जरूर होना चाहिए।
सही है, तो आपके ख्याल में सुपर मार्केट के सिस्टम में कौन सा जो ऐसा बेसिक नॉलेज है कि फर्स्ट आपने वो होमवर्क अगर किया हुआ है तो फिर एम्बार्क पर दिस मिशन।
बिल्कुल, मैं उसके लिए यस करता हूँ जी कि देखें इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट इजीएस्ट बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन इसकी जो पेचीदगियां आती हैं उसमें क्योंकि आपका कैश इन्वॉल्व हो जाता है, आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो आपकी मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए सबसे पहले आपकी अपनी कमिटमेंट 101% जो है वो बहुत जरूरी है। छोटे साइज के बिजनेस के लिए आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप जब चाहें छुट्टी चले जाएं, आप जब चाहें जहां चाहें उसको बंद कर दें, आप ऐसा नहीं कर सकते।
यानी अगर आप जाहिर है कि जब सुपर मार्केट का बिजनेस किसी का भी ग्रो करता है, व्हेन यू हैव टू मेनी ब्रांचेस, देन इज द टाइम प्रॉब्लम यू मे लाइक टू टेक सम रेस्ट।
बिल्कुल,
लेकिन जिस वक्त यू आर स्टार्टिंग इट अप,
बिल्कुल
यू गॉट टू बी फुली एंगेज।
बिल्कुल बिल्कुल 100%, बिल्कुल आप बिल्कुल आप साथ बाजार पर मारे। ऐसा है कि आप इसमें इंडल्ज होने से पहले, इसमें जाने से पहले आप देखें कि आप इस आपके इसकी जो रिक्वायरमेंट है, करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप में कस्टमर सर्विस का एटीट्यूड है।
अच्छा, ये आप में इसके लिहाज से आप समझते हैं एज अ ओनर
जी,
ये उसमें होना जरूरी। मैं ये समझता हूँ कि चले जी ये तो जरूरी है जो कि स्टोर पे लोग हैं जी कि यू गॉट टू बी कस्टमर ओरिएंटेड,
बिल्कुल
सर्विस ओरिएंटेड पर्सन, तो क्या एक ओनर के लिए भी होना ये जरूरी है?
देखें आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस देख लें उसके पीछे आपको उस ओनर की कमिटमेंट जो है ना वो नजर आएगी। वो जब सुबह उठता है उसने ये कमिट करके उठना है कि मैंने आज नए कस्टमर क्रिएट करने हैं, यानी ये है कि वो जो उसके पास हैं उसने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ऑन टॉप ऑफ देम उसने उनकी जरूरियात, उनकी कन्वीनियंस, उनकी हैप्पीनेस, उनकी अपने साथ लॉयल्टी को इंश्योर करना होता है। यानी आपकी सक्सेस जो है इसके ऊपर बड़ी काउंट करती है। ये देखें ओपन मार्केट है, इसमें जैसे दूसरे मुल्कों में होता है कि जी आपने एक आबादी बनाई है या आपने एक नया एरिया डेवलप किया है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं या म्यूनिसिपैलिटीज हैं कई मुल्कों में हमारे चूंकि सुनने वाले यूरोप में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, और इसको वो डेफिनेटली वो समझते हैं कि गवर्नमेंट एक इम्पोज कर देती है नंबर ऑफ फर्म्स, कभी इस 1000 फॉर एग्जांपल कई मुल्कों में है कि 1000 बंदों की जो आबादी है उसको 33 फर्म सर्व कर सकती है, उसमें एयरलाइन हो गई, एक बैंक हो गया, उसमें ये ग्रोसरी हो गई, एक रेस्टोरेंट, मिला जुला के 30 फर्म उसको सर्व करें तो दे कैन सर्वाइव। उसमें ये नहीं होगा कि जिसका जी चाह आपने घर की दीवार तोड़ी और उसमें ग्रोसरी शॉप।
नहीं वो तो ठीक है फाइन, लेकिन इस वक्त तो हम मतलब अभी हम रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं,
जी
कह रहे हैं कि इसको आप, मैं फिर उसी क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूँ कि वो कौन सी बेसिक्स हैं जो कि होमवर्क है आपके नजदीक पहले एक आदमी को कर लेना चाहिए कि जिसके पास पैसे हैं, वो जरा बताइए।
उसमें यह है कि जी देखिए आपने जिस जगह पे अपना स्टोर खोलना है, हमारे बिजनेस में एक चीज जो है ना वो मोस्ट कह लें कि आप अटमोस्ट इम्पोर्टेंस जिस ली है वो है लोकेशन,
लोकेशन, फिजिकल लोकेशन,
फिजिकल लोकेशन ऑफ योर एंटरप्राइज, योर स्टोर। अब किसी भी रिटेल बिजनेस में है अगर आपने ये उसको कंसिडरेशन में नहीं रखा कि आप उस मार्केट में अपना बिजनेस खोल रहे हैं जहां पे उसकी जरूरत है, तो यू आर गोइंग फॉर अ फेलियर। आप एक बिजनेस खोलने से पहले उस आबादी को देखते हैं, लोगों की इनकम को देखते हैं, वहां का जो डेमोग्राफिक सिचुएशन उसको देखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि मैंने किस टारगेट यानी सेगमेंट ऑफ द मार्केट को टारगेट करना है। हाई इनकम लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, फैमिलीज हैं, बैचलर्स हैं।
मैं समझ गया कि बात ना, मतलब मैं इसको मुख्तसर इस तरह से कर देता हूँ मिसाल देके जिससे ज्यादा हमें समझ आएगी।
जी जी,
वो ये कि अगर आप एक सुपर मार्केट बना रहे हैं, अगर तो आप डिफेंस कराची में, लाहौर में या इस्लामाबाद में बना रहे हैं,
बिल्कुल,
तो इट्स अ जस्टिफाइड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी,
बिल्कुल।
अब यही अगर आप सुपर मार्केट को थोड़ा हम डिफाइन करेंगे अभी आगे जाकर।
जी जी बिल्कुल,
एक सुपर मार्केट, एक तमीमी के टाइप की सुपर मार्केट अगर आप जाकर के किसी छोटे शहर में या किसी गांव में लगा देते हैं,
लो इनकम एरिया में,
तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर श्योर,
इट्स नॉट गोइंग टू वर्क।
आपके मेरे क्वेश्चन पे आपने एक चीज कही, आपने कहा जी कि सबसे पहले आपको लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्या चीजें हैं? एक तो आपने ये कह दिया, मतलब क्या यही चीजें हैं, हमने कहा कि जी हम जिस जगह बना रहे हैं वहां पे हमें ये देखना है कि इर्द गिर्द नेबरहुड क्या है, कौन लोग हैं, उनका इनकम ब्रैकेट क्या है उनकी, और उसके अंदर कौन से लोग, किस उम्र के, एज ग्रुप के लोग ज्यादा वहां पे बसते हैं, कितने लोग हैं, बैचलर्स हैं, कितने फैमिली वाले हैं, तो उनके कितने बच्चे हैं।
जी जी,
अच्छा इसके लिए जब आप नेबरहुड की बात करते हैं, इज देयर अ साइज यू लुक फॉर?
हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखें मैंने जैसे कहा कि आपको कम्पेटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आपके जो नेक्स्ट आपका कंपटीशन है वो आपसे कितने फासले पर।
अच्छा ये भी देखना,
100% देखें ना, आप एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट है उसके साथ आपने छोटी सी एक शॉप खोल दी है, आपके पास वो बाइंग पावर नहीं
है, आस्किंग फॉर ट्रबल,
यू आर डेफिनेटली आस्किंग फॉर ट्रबल। नाउ आप देखना चाह रहे हैं कि अगर आप फर्ज करते हैं, समझते हैं उसकी, आप वीकनेसेस को नोट करें या स्टडी करें कि वो तो बंदा आधा दिन खोलता नहीं है या सुपर मार्केट वीकेंड पे बंद रहती है, यू देन प्रॉब्ली स्टैंड अ चांस। लेकिन अगर फर्ज करें कि वो सर्विस भी बेहतर दे रहा है, उसकी बाइंग पावर ज्यादा है और उसके नेबरहुड में आपने अपनी शॉप खोल दी, तो डेफिनेटली
सो अनलेस अदरवाइज यू हैव कोई नेची, कोई एज है तो आप कीजिए, अदरवाइज यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। चले ये हो गया एक तो कि जी आप इर्द गिर्द में अपने कम्पेटिटर्स को
देखिए,
अगर कम्पेटिटर नहीं है तो फिर आपको ट्रैफिक देखनी है,
बिल्कुल,
और उस नेबरहुड का जो एक स्टेटस है उसको देखना है कि यहाँ पे बाइंग पावर वो है कि नहीं है,
बेशक।
और उसके बाद ऑब्वियसली यू गो आउट ऑफ दैट नेबरहुड एज वेल इन योर रिसर्च, और उसमें आप ये भी देखना चाहते हैं कि ठीक है जी, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी सुपर मार्केट में सिर्फ वही जाता है जो डिफेंस में रहता है, जो मेरे ख्याल में गांव में रहता है उसको भी मालूम है कि किसी सुपर मार्केट से जाके मुझे अगर वो चीज मिलनी है तो सुपर मार्केट से मिलनी है तो वहां पे आएगा। बट योर प्राइम टारगेट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सुपर मार्केट और आइटम्स यू आर गोइंग टू डील
विद,
एम आई राइट और रॉन्ग?
बिल्कुल,
देखे ना मैं ये भी बात करता हूँ कि एक आदमी सुपर मार्केट, सो आप अच्छा ये इसको मैं थोड़ा क्लियर करते हैं, एक सुपर मार्केट को डिफाइन कैसे आप क्या करेंगे, मतलब एक बकाले में और सुपर मार्केट में क्या फर्क
है? इसमें ये है जी कि ये इंडस्ट्री ने,
अच्छा और दूसरी साथ में मैं मदद चाहता हूँ, एक चीज और भी क्लियर कर दीजिएगा, सुपर मार्केट और जो डिपार्टमेंटल स्टोर है आर देर द सेम? अगर सेम है, अगर नहीं है सेम तो क्या फर्क है, और इन दोनों में और एक नॉर्मल बकाले में या ग्रोसरी शॉप में, नेबरहुड की कॉर्नर शॉप में क्या फर्क है?
जी मैं बता रहा हूँ, ऐसा ये है कि दरअसल इंडस्ट्री ने इनको बहुत सारे ग्रुपों में इस रिटेल बिजनेस को, ग्रोसरी रिटेल बिजनेस को या दूसरे रिटेल बिजनेस को डिवाइड किया हुआ है, और इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन भी हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे ہائپر مارکیٹ کا سعودی عربیہ ریاض میں اس میں ایک بہت بڑا بوم آیا تھا. جس کے پاس بھی پیسے تھے, جو کمپنی بھی اس ریٹیل بزنس میں آنا چاہتی تھی, انہوں نے ہائپر مارکیٹ کھولی. اب یہ کہ ہائپر مارکیٹ کا ایک سرٹن ایک سائز ہے, اگر وہ آپ کے اس سائز کے آپ کی بلڈنگ, آپ کی پارکنگ, آپ کے ڈپارٹمنٹ سائز وہ نہیں ہے, دین یو ڈو ناٹ کوالیفائی فار دیٹ کیٹیگری. ہائپر مارکیٹ میں آپ کو جیسے کو پتہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ڈپارٹمنٹس بڑے ہوتے ہیں, اٹس مور
کمپلیش. لیکن ایک شاپ میں, سپر مارکیٹ میں آپ ان کو آپ کیسے علیحدہ کریں؟
جی میں عرض کرتا ہوں کہ جو ایک سٹور ہے نا, چھوٹا سٹور, اس میں آپ کو فل ڈپارٹمنٹس نہیں ملیں گے. مثال کے طور پہ اگر ویجیٹیبل ہے تو بیف نہیں ملے گا, اگر میٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ کو سی فوڈ نہیں ملے گا, سی فوڈ ہے تو آپ کو ڈیلی ڈپارٹمنٹ نہیں ملے گی, تو دین یو آر اے اسٹور.
اچھا اگر میں اسی آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے مزہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جو گروسری شاپ ہے اس بندے نے جتنے ڈپارٹمنٹس آپ کے پاس ہیں, ڈپارٹمنٹ سے مراد آپ کی ہے کیٹیگری آف فوڈ آئی بلیو, تو اگر وہ سارے وہ رکھ لیتا ہے تو کین ہی کال ان سیلف سپر مارکیٹ؟
ناٹ ریلی. میں نے کیا کہ اس کا جو ڈٹرمنٹ کرتی ہے نا جی, اس کی کیٹیگری, اس کا سائز, جی سائز, فزیکل سائز, کتنا بڑا ہے, کتنا کھلا ہے, چھوٹے اسٹور پہ آ جاتے ہیں جیسے آپ.
صحیح ہے. اچھا اب آپ جیسے بتا رہے تھے کہ چھوٹے اسٹور میں آپ نے یہ کہا جی کہ اس کے بازار ڈپارٹمنٹ, اور کیا چیز ڈیفرینشیٹ کرتی ہے دونوں کو؟
بیسیکلی سائز آف اٹ از ڈیفرینشیٹ کرتی. جی ہاں بالکل. اور اس کے ڈپارٹمنٹ اسکیل, ڈپارٹمنٹ سائز اینڈ دا نمبر آف ڈپارٹمنٹ. جیسے عام اسٹور میں آپ کو 15 ڈپارٹمنٹ بھی ملیں گے, آپ اسٹور میں آپ کو ہو سکتا ہے آپ بک شاپ نہ ملے فار ایگزامپل, لیکن جو نیا ٹرینڈ آ رہا ہے اس میں آپ کے سپر مارکیٹ, جہاں ہائپر مارکیٹ میں ایون آپ کو ٹیلرنگ فیسلٹیز ہیں, آپ کو باربر شاپ کی فیسلٹیز ہیں, آپ کو یہاں تک مساج فیسلٹیز انہیں دی ہوئی ہیں. سپر مارکیٹ اسٹور میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, سپر مارکیٹ میں ایون ان لوگوں نے اسٹورس میں, اور میں بس عرض کروں کہ یہاں ہمارے ہاں اس کو سپر مارکیٹ کہتے ہیں, اور اسی کو اگر آپ امریکہ میں جائیں تو اس کو اسٹور بھی کہتے ہیں, وہاں پہ سپر مارکیٹ نہیں کہتے ہیں.
اچھا
جی جی بالکل. تو بیسیکلی جو فرق ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے, ایک چھوٹا سٹور ایک بڑا سٹور.
صحیح, مطلب سمپل سی بات ہے کہ اگر تو آپ کی انوینٹری بڑی ہے,
جی
آپ کے پاس لائن آئٹمس زیادہ ہیں, تو یو بیکم بگر.
ایسا ہے کہ اس میں ایک تو سائز ہے, دوسرا آپ کا ٹرن اوور پہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا ٹرن اوور کرتے ہیں تو آپ یو آر کلاسیفائڈ ایز اے سپر مارکیٹ اور بگ سٹور, ادروائز یو آر جسٹ سمال کنوینئنس سٹور جسے آپ کہہ رہے تھے, یا نیبرہڈ سٹور, مام اینڈ پاپ سٹور جسے کہتے ہیں سعودی عرب میں, اس کو بکالا کہتے ہیں پاکستان میں, اس کو پرچون کی دکان کہتے ہیں, جیسے انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز, وہ بھی آپ کو سٹور ہی کہلاتے ہیں.
اچھا واپس جاتے ہیں پھر ایک قدم پیچھے, میں پھر یہ پوچھتا ہوں اس دفعہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کوشچن. آپ نے کہا جی کہ آپ کو ایک اپنی کنزیومر کا سائز بھی دیکھنا ہوتا ہے,
بالکل,
اس کو آپ تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ کیسے میں سائز, میں اب جا رہا ہوں پاکستان, میں جا کر کے لاہور میں ایک سپر مارکیٹ بنانا چاہتا ہوں,
بالکل.
اچھا اب میرے پاس پیسے بھی ہیں, میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں لاہور جاؤں گا اور جا کر کے میں گلبرگ کے علاقے میں ایک سپر مارکیٹ بناؤں گا. وہ اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنی سیفے ہے, لیکن ایک بکالے جتنی بھی نہیں ہوگی, ایک بکالے سے 10 گنا 15-20 گنا بڑی ہوگی. یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے سپر مارکیٹ.
جی جی
میں بات بالکل آپ کو سمجھ گیا. مجھے ڈپارٹمنٹس, میرے پاس تمام آئٹمس ہونے چاہیے. کیسے یہ سب کچھ ہوگا, کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں؟
میں عرض کرتا ہوں جی, اس میں یہ ہے طاہر بھائی کہ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ جب دکان لیتے ہیں آپ ڈیفینیٹلی سرمایہ کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کی اونرشپ لے رہے ہیں یا آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا آپ اس کو کسی کے ساتھ مل کے شیئر کر رہے ہیں. تو آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ لوگ کسی کے ساتھ گروسری اور دوسرے جو ہیں بزنسز آپس میں مرج ہو کے آدھا آدھا پورشن وہ یوز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ان بیسکس سے شروع کریں. ونس آپ نے مارکیٹ کا سروے کر لیا ہے, آپ نے لوگ دیکھ لیے ہیں کس طرح کا کسٹمر ہے, آپ ہر طرح کی ایفرٹس جو کر سکتے ہیں, آپ نے وہ کرنی ہے.
اچھا کیا یہ کچھ بھی کرنی ہے طارق بھائی, مجھے کرنا ضروری ہے کہ ڈو آئی ہیو ٹو ہائر ا کنسلٹنسی, کوئی ریسرچ کمپنی؟
بڑا اچھا کوسچن ہے کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. کوئی بندہ ڈسکس تو نہیں کرتا کہ جی یار اس محلے میں اتنی سیلری والے لوگ رہتے ہیں یا اس بندے کی اتنی, تو دس از ویری پرائیویٹ تھنگ. ہاؤ ڈو یو نو اٹ ایکچولی؟ بدقسمتی سے جس مارکیٹ کا آپ نے بتایا ہے وہاں پہ اس طرح کے نمبرز اویلیبل نہیں ہیں. ادروائز دیکھیں دوسرے ملکوں میں کسی بھی اکانومی کا سائز جہاں پہ بھی میئر ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, آپ انکم ٹیکس والوں کے پاس چلے جائیں, آپ ہاسپٹلس کے پاس,
ڈیموگرافک ڈیٹا آپ کو ملتا ہے,
آپ کو ڈیموگرافک ڈیٹا ملتا ہے اور آپ کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو 101% تو صحیح نہیں ہوتا وہ, لیکن یہ کہ آپ کو ایک رف آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے, یہاں ایک دیکھیں نا ایک علاقہ ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر اس کی اکانومی بیس ہے, وہاں پہ فیکٹری ہے یا ہاسپٹل ہے تو اس کے مطلب وہاں پہ ڈاکٹرز رہتے ہیں. اگر وہ الگ سے آپ کسی یونیورسٹی کالج کے سامنے کھولنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں اسٹوڈینٹس ہیں پروفیسرز ہیں اسٹاف ہیں وہ کم از کم این ایوریج دس مچ انکم ان کی ہوتی ہوگی, اس حساب سے آپ دیکھتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں ان کا کچھ ایکسپوجر ویسٹرن لائف اسٹائل,
مطلب اسے آپ اپنے پروڈکٹ لائن کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے.
جنرلی آپ کا پروڈکٹ مکس جو ہوتا ہے وہ یہ آپ نے دیکھا کسٹمر کو آفٹر آل آپ نے بیچنا ہے, آپ نے ایک آئٹم رکھی ہے,
آپ کو چیزیں وہ لانی ہے جو لوگوں کو چاہیے.
دیکھیں آپ مثال کے طور پہ وہاں پہ آپ ایک اچھے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس پیٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ بھی کنسیڈر کرنا ہوگا, آپ نے لوگوں کو تو فیڈ کر دیا تو ان کے پاس جو ان کے ساتھ ساتھ ہی پیٹس ہیں ان کو آپ نے ان کے کتے بلیاں برڈ فش وغیرہ ان کے لیے آپ کنسیڈر ہی نہیں کیا, تو پھر یہ تو آپ کسٹمر کے لیے کنوینئنٹ دینے کی بجائے اس کو کنوینئنس اس کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کھانا ہے تو میرے پاس آ جائیں, اگر آپ نے اپنے پیٹ کے لیے لینا ہے تو آپ دوسری جگہ پہ جائیں. تو یو آر بیسیکلی ٹیلنگ یور کسٹمر ٹو گو اوے فرام یو, اور یہی ایک ہمارے بزنس کی ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ون اسٹاپ شاپنگ ٹرپ ہو.
یار آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تاروے, تھوڑا روکتا ہوں آپ کو یہاں پہ. پہلی بات تو یہ کہ آج تک سامعین میرے خیال میں یہ سب کے ساتھ اتفاق ہوتا ہے کہ مجھے گھر سے بیوی بھیجتی جاؤ جا کے دودھ لے کے آؤں, تو ہمارے گھر کے پاس تمیمی صرف ہے تو میں دودھ لینے جاتا ہوں.
جی جی
یار لٹرلی دودھ از دا لاسٹ تھنگ آئی بائی سو مینی تھنگس بفور اٹ.
بالکل
یار یہ دیکھ لیجیے, بول رہا ہوں یار یہ انگور سستا ہو رہا ہے, انگور کا ایک ڈبا گور.
بالکل
سو آئی تھنک جہاں پہ انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہے اور ایکسپوجر لائن آئٹم کا زیادہ ہے وہاں پہ ان کے آپ کا جب کسٹمر اندر آتا ہے تو بات آپ والی میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وین ہی فائنڈ ایوری تھنگ انڈر ون روف ہی از یور کسٹمر دین.
بالکل
فور
بالکل دیکھیں ہماری جو فلوسفی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اٹس اے کسٹمر ہو پیز دا سیلریز. آپ کا مالک یا آپ کی کمپنی آپ کو جاب دیتی ہے, جو آپ کی سیلری پے کرتا ہے وہ آپ کا کسٹمر ہوتا ہے. تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو جاننا سمجھنا اور اس کا خیال رکھنا یہ ہمارا مطلب پرائیورٹیز میں ہوتا ہے,
یہ پرائم ایک ہے.
بالکل
تو اچھا تو کیا چیزیں اب یہ بتائیے مجھے کہ پہلی بات آپ نے کہی کہ ریسرچ کیجیے آپ پہلے.
بالکل
یہ یو نیڈ ٹو نو ہو یور کسٹمرز آر.
ہاں جی
واٹ کین دے بائی اینڈ واٹ ڈو دے نیڈ.
بالکل 100%
یہ ہو گیا.
جی جی
اس کے بعد
یہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ٹائم ہے نیور کنسیڈر اٹ ویسٹڈ, یہ ال یوزڈ نہیں ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہے. اس سے بعد آپ نے خوش ہونا ہے یا آپ نے اپنے فیصلے کے اوپر ہونا ہے, یہ اس کے بعد شروع ہونا.
اچھا ایک چیز تو یہاں پہ پھر ریسرچ کے حوالے سے ایک ذہن میں آئی, وہ یہ کہ آبویسلی آئی ایم پریٹی شیور کہ پاکستان میں ریسرچ کمپنیز تو ہوں گی.
بالکل
اگر آپ اگر یہ مجھے بتائیے کہ اگر اچھی بات آپ نے کہی کہ اسٹوڈینٹس ایز اے پروڈکٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ کار ہو, تو اگر آپ اس پہ اگر پیسے خرچتے ہیں تو کنسیڈر اٹ از اے گڈ انویسٹمنٹ.
منی ویل اسپینٹ. میں اس سے بہتر آپ کی جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے اس سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دس از دا منی دیٹ یو مسٹ اسپینڈ. لیکن کچھ ایک چیزیں ہوتی ہیں جہاں کے پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ایک تو آپ کی لیگل ایشوز جتنے ہیں, آپ شاپ لے رہے ہیں اس کا پراپر کانٹریکٹ, اس کی ڈیوریشن, وہ وہاں پہ آپ الاؤ ہے کہ نہیں ہے, آئی مین آل دیس تھنگس یو گو تھرو اے لائر, یو شوڈ گو تھرو لیگل پیرام جو ہوتے ہیں ان سے جانا چاہیے.
اچھا پہلی بات ہوگی جی کہ آپ نے ریسرچ کر لیا, ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو ہو گیا جی کہ ٹھیک ہے جی مجھے معلوم ہے پڑھے نہیں.
اب دیکھیں
آئی ہیو اے پیس آف لینڈ ایز ویل, آئی ہیو کنسٹرکٹڈ اے ہال ایز ویل.
ونس یو ہیو دس میز, آئی ایم سوری میں پھر بیک اپ کر رہا ہوں کہ ونس یو ہیو اپنے آپ کو دیکھ لیا, آپ نے اپنی مصروفیات اپنی کمٹمنٹ کہ ناؤ یو آر دیئر, اس میں یہ ہے کہ آپ کو گلے کے اوپر چھوٹی شاپ کے اوپر خود بیٹھنا پڑے گا. ہمارے جو فلسفہ ہے جو بزنس چھوٹے بزنس کی ایک رول آف تھم وہ یہ ہے کہ 5% تو آپ جو ہے آپ اپنی وائن سے بچاتے ہیں اف یو آر ڈوئنگ اٹ یور سیلف. آئی ایم ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسمال بزنس. ہاں جی اسٹارٹ اپ, اور یہ بھی ایک بڑی
انٹرسٹنگ
آپ اسٹارٹ ہی چھوٹا کرنا چاہیے جی, فار اینی مطلب اگر آپ اچھا ایکسپیرینس ہے اس کو گرو کریں اور کیپ ان یور بزنس پلان کہ آپ نے ٹارگیٹ رکھے کہ آپ نے 5 سال میں ایک اور شاپ کھولنی ہے या आपने फ्रेंचाइज लेनी है या यू आर गोइंग टू गेट बिगर, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, यू आर डूइंग इट फॉर योर चिल्ड्रन। आपका ये तो बिजनेस प्लान जब आप बनाएंगे तो ये तो आपको अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा कि वेयर यू वॉन्ट टू बी 10 years फ्रॉम नाउ। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये जितना खर्चा आप करते हैं उसलिए करते हैं। उसके बाद जब आप अपने आप को वैल्यूएट कर लेते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स हैं बंदे में कि ही कैन, पैसे भी हैं, और ये पैसों की बात हम बाद में करते हैं कि हाउ डू यू यू नो सेव दैट योर इन्वेस्टमेंट एंड हाउ मच मनी यू नीड एंड ऑल दैट। ये एक इश्यू होता है कि देखें पता भी नहीं चलता। अब आपने जैसे अभी आपने पूछा कि जी वो कैसे डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल एंड हाउ टू सेल, ये यही इस बिजनेस का ट्रिक है। हम मैन्युफैक्चरर नहीं होते हैं, हम तो हमारे एक कह लें ट्रांजिशन होता है प्रोडक्ट का। मैन्युफैक्चरर बनाता है, हमें देता है, हम कस्टमर को दे देते हैं। इसमें हमारी कोई किसी किस्म की मास वाइज के कि जब वो हमारी इन्वेंट्री बन जाती है उससे पहले वो ना तो हमारी लाइबिलिटी होती है और ना फिर वो।
आप अभी एक चीज कह रहे थे जो बीच में रहेगी, वो ये कि कोई भी स्टार्टअप बिजनेस जो है जिसको आप पहले तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि डोंट गो बिग,
बिल्कुल नहीं जी,
लेट इट ग्रो। आप इसको एक कंटेन और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पे आए हैं, वो आपके लिए बेहतर है। आप जल्दबाजी मत कीजिए। आपने दो बातें और जो कही, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मुख्तसर नक्शल में करना लोगों को अच्छा लगता है, कि दूसरी बात आपने ये की कि रिसर्च मार्केट की पहले जरूर कीजिए, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, आया जहां पे आप करना चाह रहे हैं वहां पे हो भी सकता है कि नहीं। उसके बाद यू मस्ट हैव लीगल सर्विसेज अवेलेबल टू यू। डू नॉट ट्राई टू बी कि जी आई नो एवरीथिंग, आई वुड लाइक टू सेव सम मनी हेयर, मुझे लाइफ की क्या जरूरत है, मुझे पता है कौन कौन सा फॉर्म चाहिए, ऑफिस जाना है, नहीं। ये जो लीगल सर्विसेज होती हैं, दे प्रोटेक्ट यू आफ्टरवर्ड्स एज वेल।
बिल्कुल बिल्कुल,
इसलिए इनको भी आपने छोड़ी। आपने एक
बड़े इश्यूज आ जाते हैं,
फिर आपने बात की थी कि अच्छा जो ग्रॉसर है उसकी पहली बात होती है कि 5% तो अपनी बाइंग में बचाता है
जी,
तो ये बात बीच में रहती थी, बाकी क्या उसमें
जी मैं करता हूँ जी 5%। उसके बाद वो बंदा अपना जो कैश पे बैठता है 10% उस पर बचा लेता है, छोटी जो बिजनेस है, यानी स्ट्रेट वे आपका 10-15-20% जो आपका जो बचना होता है। आपको देखें ये सुपरमार्केट में बड़े बड़े मार्जिन्स नहीं होते, ये जो हम ये सोचते हैं कि जो चीजें थी, ये ओपन मार्केट है, कंपटीशन का दौर है, जगह जगह सुपरमार्केट्स और शॉप्स खुली हुई हैं, और बड़ी शॉप्स पे आप कम्पीट नहीं कर सकते, उनकी बाइंग पावर्स मसल ज्यादा होते हैं, और एक ट्रक लोड ले लेते हैं वो, तो उसमें वो उनको ज्यादा जो ट्रेड डील मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, वो अपने कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। छोटा शॉपकीपर, छोटा बकाले वाला, छोटा स्टोर वाला, वो उसको ये डिसएडवांटेज होता है बेचारे, क्योंकि उसने उतना ही खरीदना होता है, इसलिए उसको बाइंग खुद करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ से सस्ती मिलती है, उसको ट्रेवल करना पड़ता है।
अपने पैसे हैं, बंदे को
बिल्कुल
ध्यान करें
जी, बिल्कुल
5% उसने बाइंग पे बचा लिया,
बाकी उसने कैश से बचा लिया,
कैश से बचा ली, कैश रजिस्टर खुद बैठा,
यही उसकी बचत है, यही 10-15% बचत है अगर वो किसी मुलाजम को बिठा देगा। अनफॉर्चुनेटली आपको अच्छा जो है वो मुलाजम मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप अपनी इन्वेंट्री जो है ना, क्योंकि आपको स्टार्टअप है ना जी, यू कैनॉट अफोर्ड टू पुट योर थिंग्स ऑन रिस्क,
बिल्कुल
यू कैनॉट। उसमें ये है कि आपको हर चीज का सेफ गार्ड खुद करना पड़ेगा, इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में या मोहल्ले के आपने पाकिस्तान किया है तो उसमें देखा होगा, या इवन यूरोप में, इवन यहाँ पे भी
फैमिली
खुद बैठते हैं और ये फैमिली बिजनेस बन जाता है, अपनी उनकी बच्चियां बैठती हैं, यूरोप में, अमेरिका में मैंने देखा है, जब वालिद आराम करने के लिए जाते हैं फिर बच्चे बैठते हैं, फिर वाइफ बैठती है, ये सारी चीजें होती हैं कि वो कैश जो है ना शुरू में, क्योंकि स्टार्टअप है ना जी, उसमें आपकी इन्वेंट्री, आपकी पूरी जिंदगी पूंजी लगी हुई है, तो उसको आप किसी तौर पे भी उसको यू कांट पुट इट इन डेंजर।
ठीक है तारा भाई, मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा सा वक्फा लेते हैं,
ठीक है,
और बाकी इसमें जो चीज हम करेंगे वो ये है कि बाकी आपसे इन जनरल डिस्कशन में आप हमें बताइएगा और किसी इसके बारे में उनको बनाने के लिए उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, स्टॉक मैनेजमेंट कैसे की जाती है, मार्कअप कैसे आप मतलब जो प्रॉफिट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इन जनरल फॉर्मेट, इन पे बात करेंगे। ये बताइए मौसीकी से शौक है?
बिल्कुल जी, वो मौसीकी तो ये है कि जिंदगी की रौनक है, और इसमें यह है कि मुझे तो जो है फैज अहमद फैज साहब मेरे
शायर है,
आप तो याद है कि गलों में रंग भरे बादनों बहार चले, वो हमारी को दो हफ्ते बहस होती रही थी कि ये शेर गलत है कि बादनों बहार चले और चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले,
वो गुलशन क्या है
और गुलशन क्या है, और फिर आई है तो कारोबार में क्या है, ये शेर बनता नहीं है, तो
अच्छा, तो फैज की क्या सुनना चाहेंगे आप और किस किस किसकी आवाज में आपको सुनाएं?
जी मुझे अगर आप इकबाल मानो साहबा का गाया हुआ सुना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे दोस्त मोहम्मद अली साहब
हम देखेंगे
उनको जन्नत नसीब करे। ये वो उनके एक होता था वो घर के ऊपर ये महफिल होती थी तो ये इकबाल मानो साहब ने वहाँ पे गाया था वो।
हाँ जी, इकबाल मानो मतलब गायक है, जो क्लासिकल गायक हैं हमारे पास कुछ हैं उनमें से एक है, बड़ा मुमताज नाम रखती है। तो आइए सामीन इकबाल बानो से सुनते हैं हम, देखेंगे फैज अहमद फैज का कलाम और उसके बाद तारक भाई से हमारी बातें जारी रहेंगी। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, अभी बहुत बहुत मजे की और बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बतानी है।
हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जब जुल्मो सितम के कोहे गरां, जब जुल्मो सितम के कोहे गरां, रुई की तरह उड़ जाएंगे, जब जुल्मो सितम के कोहे गरां, जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, के कोहे गरां, जब जुल्मो सितम के कोहे गरां, रुई की तरह उड़ जाएंगे, रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूम के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। عرض خدا کے کعبے سے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے جب عرض خدا کے کعبے سے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو ناظر بھی ہے منظر بھی Thank you. असर भी उठेगा।
कैसा लगा जनाब आपका नगमा?
ओह भाई, आपने मुझे वो अपना इंकलाबी दौर हमारा जो था, वो जिस जमाने में हम सुर्खों की बातें किया करते थे, वो याद दिला दिया।
हाँ, लेकिन ये है कि बातें कुछ सच भी हैं,
बड़ी सच बात।
अच्छा, मौजूद की तरफ वापस चलते हैं।
जी बिल्कुल।
तारक भाई, मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने रिसर्च करवा ली, मैं मार्केट सुपर मार्केट बना रहा हूँ, मेरे पास जगह भी है खुली। अब मुझे ये बताइए, मुझे उसके अंदर चाहिए क्या क्या और किस चीज़ की क्या परसेंटेज होती है वहाँ पे? और अब ये जेहन में रख लेते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन ये भी कर लेते हैं, हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आपका फ्रोजन आइटम भी बिकेगा, चिल्ड आइटम भी बिकेगा, फ्रेश ग्रीन्स भी बिकेंगी, टिन फूड भी बिकेगा, खिलौने भी बिक सकते हैं, ये जो सब चीजें होती
है। ठीक
है जी, एक मुतवस्त इलाके में हम ये सुपर मार्केट बना रहे हैं
जी,
इसको मैं सेटअप अंदर से अब कैसे करूंगा?
जी उसको
क्या क्या हार्डवेयर चाहिए मुझे, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? हम टच करेंगे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को भी बाद में, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। मुझे क्या क्या चाहिए?
देखें, सबसे पहले देखें, आप एक अच्छे ग्रोसर के लिए बहुत जरूरी है वो ये समझ ले कि ये जिस इलाके में वो खोल रहा है अपनी शॉप, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस्म का है, वहाँ पे बिजली की सप्लाई कैसी है, लोगों के घरों में फ्रीजर हैं, फ्रिजे हैं
जी,
उस हिसाब से आपने डिटरमिन करना होता है कि भी मेरे शॉप में लोग फ्रीजर फ्रोजन आइटम्स लेके जाएंगे, ओवर स्टोर कर सकते हैं, वो बार बार नहीं आ सकते, तो इसलिए आपको फ्रोजन डिपार्टमेंट कंपैरेटिवली अच्छा बड़ा रखना पड़ेगा, और उसके रेंज जो है प्रोडक्ट रेंज भी बड़ी।
अच्छा, ये फ्रोजन डिपार्टमेंट जब हम कहते हैं तो देयर आर टाइप ऑफ हार्डवेयर वन शुड लुक फॉर?
जी हाँ बिल्कुल,
ये फ्रीजर लाके रख दूं मैं?
बिल्कुल।
सुपर मार्केट के फ्रीजर में देखा है कि ऊपर से खुले होते हैं लेकिन अंदर चीजें जमी होती है, तो यार ये तो नजी भी बड़ी लेते होंगे, और बहु चीज होती होंगे यार,
ये बड़ी रिसर्च,
खर्चा भी तो सही है यार। आप
बिल्कुल ऐसा ही, ये रिसर्च देखें, आफ्टर ऑल देखें, ये सब अर्जी है कि ये कस्टमर को पे करना पड़ता है, और ये होता है कि ये सारी चीजें जो बनती हैं ये बड़ी रिसर्च के बाद ये लोग बनाते हैं, और आपको हैरानगी होगी कि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और स्पेशली जब से, और इसके दरअसल ये जितने इक्विपमेंट बनते हैं इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ब्रॉड हो गई हुई हैं, क्योंकि अब तो जितनी प्रोडक्ट बन रही हैं वो सब टेम्परेचर कंट्रोल तकरीबन एनवायरमेंट के लिए बन रही हैं। जैसे देखें, एक डेयरी है जिसमें आपके जूसेस भी आ जाते हैं, डेयरी भी आ जाती है, डेयरी की बाय प्रोडक्ट आ जाती है, ये इतना बड़ा इसमें रेवोल्यूशन आया है, इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया है कि आप मिल्क ले लें फॉर एग्जांपल, उसके कितने फ्लेवर, कितनी किस्में उसकी, पर ये यहाँ तक यानी इट्स फिनोमिनल चेंज। उसके लिए आपको रेफ्रिजरेशन और एम्बिएंट के साथ साथ वो चीजें रखनी बहुत जरूरी है, इसलिए कि कस्टमर अब उसकी अवेयरनेस बढ़ गई है, उनको पता है कि अंडे भी इवन चिल्ड होने चाहिए।
एक और चीज भी तो है इसमें जो कि मुझे मतलब वरी करती है कि हमारे यहाँ एनर्जी का बहरान है।
बिल्कुल, ये बड़ी,
और एनर्जी का लेवल जो होना चाहिए प्रोडक्शन का इस तरह के बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, शायद इंशाल्लाह हमारे मुल्क में होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। ऑब्वियसली आदमी को ये भी मेरे ख्याल में ये कंस्ट्रेंट जेन में रखना होगा कि यार मैं ये ना करूं, मैं लाके यहाँ पे 2 लाख रुपए का मैं सामान रख देता हूँ जो फ्रीजर वाला है, ये ओपन फेस फ्रीजर जो आपके होते हैं, और मेरे पास बैकअप सप्लाई भी नहीं है, और बिजली अगर ज्यादा बंद होती है, ये 2 घंटे का वादा करते हैं, 2 घंटे नहीं, वो 10 घंटे के लिए चली जाती है,
तो पड़ गया। फरमाया आपने, ये सारी चीजें आपको शॉप खोलने से पहले सारी जो सर्वे में आएंगी, आप जो फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं।
बात सामने वही आ रही है कि रिसर्च बहुत जरूरी है
जी,
इसको मत छोड़िएगा। अगर आपको एक आदमी یعنی میرے خیال میں اگر آپ پاکستان میں اگر آپ 1-2 crore روپے کا 4 crore روپے کا بزنس کرنے لگے ہیں, 1 crore روپے کا, 50 lakh روپے کا, اور اگر آپ کو ایک ریسرچ پہ 25-30-40-50 روپے خرچ کرنے پڑتے تو میرے خیال میں
آپ دیکھیں, آپ اس میں آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوگا کہ یہ میں نے پیسے ضائع کیے ہیں. جو آپ اتنا لگا کے بعد میں پچھتانا ہے اس سے مچ سیفر یہ ہے کہ آپ پہلے وہ لگا دیں, دیکھ لیں گورنمنٹ کے ریکوائرمنٹ, ٹریفک ریکوائرمنٹ, اس کے پارکنگ پلیس, اس کی کمپٹیشن اینڈ آل دیٹ, اس کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں
رسک فیکٹر نیچے چلا جاتا ہے,
رسک فیکٹر آپ کا بالکل نیچے چلا جاتا ہے. ڈونٹ فرگیٹ, یہ بڑی ہارڈ ارن منی ہے, یہ ایسی نہیں ہے. آپ کا, آپ کے بچوں کا, آپ کی فیملی کا فیوچر اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. یہ یہی پیسے ہوتے ہیں جو ہم یہاں سے یہاں کہیں سے بھی کما کے لے کے جاتے ہیں, اس بزنس میں جھونک دیتے ہیں, اور یہ پراپر اس کی انڈرسٹینڈنگ کے, اس کے یہ ساری جو ہوتے ہیں کمپلیکیشن جو بعد میں ہوتی ہیں اس کو کنسیڈر نہ کرنا, جو آپ ابھی بات بتاتے ہوتے ہیں کہ جی ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ ٹو پہ جمپ کر جاتے ہیں اور اس کے بیچ کی جتنا پروسیس ہوتا ہے اس کو
نکال دیتے ہیں.
یہ فیٹل مسٹیکس ہیں, اس کو ہم جو پیسے ہوتے ہیں ہمارے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, ہم کیوں اس کو رسک میں ڈالیں.
ٹھیک, اچھا اب یہ تو بات ہو گیا.
میں آپ کے سوری میں بات
اکوپمنٹ
کی طرف آتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ جی اگین آپ کو اس میں کافی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں, اس کا آپ کو جاننا سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ چھوٹے اسٹور ہوتا ہے, آپ کو اس کی مینٹیننس, اس کی کلیننگ, یہ وہ لٹرم پٹرم, آئیڈیلی تو یہ ہے کہ خود آنی چاہیے, اس کا ٹیمپریچر چیک کرنا, اس کی کلیننگ کرنا, اس کو سروس چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے وہ کرنا. ایون دیٹ میٹر میں تو یہ کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹور ہیں ان کو گیس ویس چارج کرنی بھی آنی چاہیے, اگر نہیں ہے تو کسی چھوٹی سی ورک شاپ سے وہ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں جو پیریوڈیکلی اس کا آ کے معائنہ کریں گے, چیک کریں گے, فلنگ کریں گے, صاف ستھرا کریں گے, کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ڈیولپ کیا ایک عرصے کے بعد اپنا فروزن ڈپارٹمنٹ لگا لگا کے بنا بنا کے, اب لوگ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جی آپ کے پاس فروزن چکن ملتا ہے, اینڈ آل آف اے سڈن آپ کا فریزر جو ہے وہ 15 دن کے لیے خراب ہو گیا. اب امیجن کریں کہ آپ کی جو ہے وہ امیج اس کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. یعنی آپ کا جو امیج ہے, آپ چھوٹا سٹور ہے آپ کا, آپ کو وہ امیج کو مینٹین کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, یو ریلی ہیو ٹو ورک ہارڈ. اس طرح
کی فروزن ہو گیا,
فروزن ہے وہ دیکھ لیں آپ, آپ کے جس کے سب سے پہلے دیکھیں کہ اسپیئر پارٹس ہیں ایزیلی اویلیبل ہیں, سروس اویلیبل ہے, یہ نہ ہو کہ آپ اٹلی سے منگوا لیں, بڑا خوبصورت آپ نے کیس منگوا لیا ہے بیکری کے لیے یا ڈیری کے لیے, یہ بڑے آج کل وہ رنگ برنگے آ رہے ہیں کالے پیلے, یہ وہ لٹرم پٹرم, یہ سب آپ نے منگوا لیا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے پارٹس نہیں مل رہے ہیں, تو یہ آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. اور جیسے آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ جس کی آپ کس پرسنٹیج سے اس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں اسپیس, تو یہ دیکھیں یوزلی طاہر بھائی ہوتا ہے کہ میں آپ کو سیل کے حساب سے بتاتا ہوں کہ جو ڈرائی گروسری ہوتی ہے یہ ہماری کو تقریباً جس میں آپ سافٹ ڈرنک یہ وہ جو شیلف ایمبینٹ پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ لگا لیں تو یہ کوئی ہماری کوئی 50% سے اوپر بھی چلی جاتی ہے, ریسٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں 3-4% بیکری ہے. لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکے کہ آپ بیکری آپ نے بنا لی ہے تو اس کو صرف ٹوٹل سٹور کا 2% دیں, اس کی پروڈکشن ہونی ہوتی ہے, اس کے پیچھے آپ کو اون ہوتے ہیں, پروفر ہوتا ہے, اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں رکھنی پڑتی ہیں, تو یہ آپ کی اس حساب سے اس کی ڈویژن ہوتی ہے. اسی طرح میٹ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ کی 5% سیل ہو رہی ہے تو اس کو, سو آپ کو یو ہیو ٹو ہیو اے سائزیبل ڈسپلے آف چکن میٹ, اور جو ہے اسی طرح آپ نے جہاں بھی آپ نے مڈل میں رکھنا ہے فریزر یا آپ نے دیواروں کے ساتھ رکھنا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس کو ہم جو بیچ میں رکھتے ہیں اس کو ہم کفن کیس کہتے ہیں, نام اس کا برا ہے لیکن دیٹس واٹ اٹس کالڈ, کفن کیس رکھتے ہیں, یا اپ رائٹ جیسے آج کل چل رہے ہیں ڈور فریزر چل رہے ہیں وہ آپ رکھ لیں, ایک چھوٹے اسٹور کے لیے آپ کے 4-5 ڈور کا وہ ہو گیا, اور اسی طرح
سبزی کی جانب چلتے ہیں, سبزی اگر آپ نے رکھی تو اس کو فریش کیسے رکھا جاتا ہے مطلب؟
جی ہاں بالکل.
اور ایک جو دوسری بات میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس معاملے کو میرے خیال میں, کیونکہ ہم نے سائز کا ڈیفائن کر دیا کہ ہم اس کو بہت بڑا سیبے کی طرح نہیں بنا رہے,
نہیں آپ چھوٹا سائز,
اس لیے ہمیں بیک آفس میں بھی کوئی کولڈ اسٹوریج کی جگہ نہیں چاہیے, ہم ڈائریکٹ جو ہمارا سپلائر ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ فرام دیئر پروڈکٹ مینوفیکچرنگ आपके आपके लाके सीधा आपको फ्रीजर में डाले
बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है जी। तो आपको बैग में नहीं चाहिए कि आपको चाहिए
नॉट नेसेसरी, लेकिन आपको ये नहीं होता
बाई कोई
स्टैंड बाई आपको डेफिनेटली जिसको हम स्टोर रूम कहते हैं या बैक रूम कहते हैं वो आपको होना चाहिए। देखिए आपने रिसीव करना है माल तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जिस दरवाजे से आपकी जो है ना जी एक कस्टमर जो कन्वीनियंस बड़ी इम्पोर्टेंट होती है
एक बैंक
बड़ा ऑकवर्ड ऑकवर्ड लगता है कि आप कस्टमर्स के सामने कार्टून नजर आ रहे हैं आप उसी को गंद भी अपना वायर से जा रहा वहीं से जा रहा है। तो बेसिकली अच्छे सा मीडियम साइज स्टोर के लिए आपको एक तो फ्रंट डोर जहां से आपके टोटली कस्टमर के लिए है उसकी वेंटिलेशन शुड बी 101% गुड, उसकी लाइटिंग उसकी क्लीनलीनेस उसकी कस्टमर के लिए शॉप में घूमना फिरना ये वो आपको हर वक्त कंसीडर करनी पड़ेगी जब आप अपना लेआउट तैयार करेंगे ना शॉप का।
वो तो मतलब समझ आ गई
उसके बाद फिर आप
आपको बैक डोर
बैक में आपका एक छोटा सा ऑफिस होना चाहिए
ठीक है
जिसमें आप आपके पेपर पड़े हो आपका कंप्यूटर पड़ा हो इसी तरह देखें हर चीज
स्टोरेज की मैं बात कर रहा था
स्टोरेज होना चाहिए
मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस तरह से बेहतर है कि और किसी भी बिजनेस में खुदा ना खास्ता आपके मेन फ्रीजर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं स्टोर के तो आप एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग उनको वापस वहां पे स्टोर
मैं करता हूँ जी। वो क्यों जरूरी है उसमें ये होता है कि देखें बहुत सारी डील्स हम ले लेते हैं कस्टमर से मिसाल के तौर पे आज से आटे का प्रॉब्लम हुआ है अब ये तो आप नहीं कर सकते कि थोड़ा सा आटा दो शेल्फ पे रखा है दो मिनट के बाद खत्म हो गया आपने हो सकता है एक ट्रक लोड ले लिया और आपका स्टोर शॉप के साथ आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो थोड़ा सा हटके कर सकते हैं जिसमें आपके पास स्टॉक होना चाहिए तो पानी आ गया जी सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई है आपका आटा आ गया चीनी आ गई ये चीजें हर वक्त आपके स्टॉक में मौजूद होनी चाहिए जो कि बेसिक
अगर आप बड़ी क्वांटिटी में लेंगे तो आपकी आपको आपको सस्ती पड़ेगी वो मार्जिन ज्यादा है इसमें
ये देखिए हमारे बिजनेस में ये पैसे बनाने का एक एक टूल है इट्स अनदर वे वी मेक मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस। हम स्टॉक खरीदते हैं जैसे हमें डील मिलती है कि 100 के ऊपर आपको 10 ट्रेड डील मिल गई है होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से वो जो 10 पीस हैं वो हमारा प्रॉफिट है
वो आपको फ्री दे रहा है
वो हमें फ्री दे रहा है। अब ये आप पे है कि आप उस 10 को आप कन्वर्ट करके कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देते हैं कि उसको अपने पास
मतलब आप या प्राइस आप बेसिकली दैट्स योर प्रॉफिट। अब आप उसको अगर आप अपनी प्राइसिंग को ऐसे एवरेज करते हैं कि थोड़ी प्राइस नीचे ले जाओ
जी बिल्कुल है होता है
ये करने ताकि ज्यादा क्वांटिटी
निकाल लें। जैसे अर्ज कर रहा था कि ऐसा होता है कि देखिए ना आपने अपना क्रेडिबिलिटी बनानी होती है मार्केट में कि लोगों को पता चले जी आपकी शॉप पे जो पाउडर मिल्क है वो पूरे इलाके से सस्ता मिलता है तो आप क्या करते हैं वो ट्रेड डील प्लस आप अपना प्रॉफिट उसमें से माइनस कर देते हैं आपको कॉस्ट बिल्कुल नेट कॉस्ट के ऊपर उसको बेचते हैं तो वो दूसरा बंदा उसको उसको फॉलो नहीं कर रहा लेकिन आपका कस्टमर तो फॉलो कर रहा है उसे इमेजिन करें आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी
बढ़ी है। एक तो अब हमने फ्रीजर्स की भी उसकी बात कर ली दूध ठंडे रखने की भी आपने अलमारियां लाके रख ली सब्जी अगर एक आदमी रखता है
जी बिल्कुल
उसको फ्रेश कैसे रखा जाता है
उसमें यह है कि जी ये सारा जो है ना आपकी वर्किंग आवर्स जो है ना जैसे मैंने कहा अगेन आई एम कमिंग बैक आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ ये होता है कि जो जब आप सर्वे करते हैं उसके ऊपर आप अपने वर्किंग आवर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये रात का बिजनेस यहाँ पे होगा कि नहीं होगा या अब हमने कितने आवर्स इसको खोलना है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया है कि भाई आपने सिर्फ 12 घंटे शॉप खोलनी है तो उसमें यह है कि आप फिर सब्जी जो है ओवरनाइट नहीं रख सकते फ्रीजर के बगैर या उसके कूलर के बगैर जो कि उसका जो ना एक सर्टेन डिग्री से 5 डिग्री के ऊपर आपको उसको रखना पड़ता है मेंटेन करना पड़ता है तो उसमें सिर्फ आपको यह है कि आप जाएं या आपने जो भी अरेंजमेंट किया हुआ है जिससे भी आपको आपका सप्लायर है सुबह उसको आपको हर सूरत में माल देना चाहिए ताजा और रात को वो आपका माल हर सूरत में खत्म हो जाना चाहिए पेरिशेबल आइटम चाहे फर्ज करें मिसाल के तौर ये है आपके पास आलू है या प्याज है ये आपके वेजिटेबल्स में आ जाती है इवन एप्पल भी जो है वो कर जाता है सस्टेन लेकिन बनाना एक आधा दिन चल जाएगा बाकी जितने लीव
फिर ये क्या करते हैं मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक मीडियम साइज के बिजनेस को जो पेरिशेबल आइटम्स की हम बात कर रहे हैं कि धनिया है दूसरे दिन में बिका अभी पड़ा हुआ है तो आपके नया धनिया ला के तो दोनों को मिक्स करके रख दे बंदा
नहीं ये चीटिंग जो है ना चलती नहीं है उस और ये करनी भी नहीं चाहिए। देखें वेजिटेबल देखें कस्टमर
कैसे काम करेगा मेरे पास
मैं अर्ज करता हूँ उसमें यह है कि दिस इज पार्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस यू हैव टू सॉल्व दैट लॉस फर्स्ट ऑफ ऑल और उसमें ये होता है कि जब आप अपनी प्राइसिंग करते हैं तो आप उसमें एक सर्टन परसेंटेज रख लेते हैं कि जो आपको हर सूरत में ट्रिमिंग की शक्ल में آپ کا ویسٹ ہوگا, آپ ٹرم کرتے ہیں, چیز ٹوٹ خراب ہو جاتا ہے, آپ نے سیب رکھا ہے وہ گر گیا نیچے, بروز آ گئے اس کے اوپر,
کالی ہو رہی ہے.
تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کسٹمر ہیں,
آنکھوں والا
ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا 5% 10% تک یہ ویسٹ چلا جانا ہے ہر صورت میں. مثال کے طور
پہ
ڈیپینڈ کرتا ہے, انڈسٹری اسٹینڈرڈ نہیں ہوتے اس میں, صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ آن یور کسٹمر جو ہوتا ہے نا, کلائنٹل جو کس قسم کی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کچھ علاقے ہیں یہاں جہاں پہ لوگوں کے پاس فریزر نہیں ہے, تو وہ تو فریش ویجیٹیبل اور فریش چیزیں لیں گے, آئے کے دن استعمال کیا وہ دوسرے دن پھر لینے آئیں گے. اور جن لوگوں کے پاس فریزر ہیں فریجز ہیں وہ چیزیں لے جاتے ہیں, وہ جا کے ان کو رکھ لیتے ہیں, کاٹ کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وٹ ایور اس کو ریسائکل کر کے وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ پھر شاپ کیپر جو ہے اس کا لاس کم ہو جاتا ہے کہ کسٹمر لے جاتا ہے. لیکن اگر اف یو آر ان اے سچویشن کے جہاں پہ آپ کے شاپ بھی چھوٹی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایڈ تو کرتی ہیں نا آپ کے ایکسپینسز میں,
تو پھر میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا تجربہ بھی آئے گا.
تجربہ آپ کا بہت امپورٹینٹ رول
پلے کرتا ہے, ڈے یو لرن فرام یور بزنس کہ جی آپ کو کیسے آگے.
بالکل, آپ کو چارٹ رکھنا پڑتا ہے, آپ کو اپنا ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے, آپ کو کیا پروڈکٹ موو ہو رہی ہے, کس دن ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں یہ ساری اس وقت آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ سیزن ہے, یہ سیزنل بزنس ہے. مثال کے طور پہ مئی جون جولائی میں ایک پروڈکٹ نہیں بک رہی ہے, لوگوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں, لوگ چلے گئے ہیں, تو آپ اسی حساب سے اپنے ویجیٹیبل پروڈیوس لیے چلے آ رہے ہیں, تو یہ تو نہیں چلتا. آپ کو اٹس لائک اے پیانو, کہاں پہ آپ کو تیز ہونا پڑتا ہے, کہاں پہ ہائی نوٹ ہیں, کہاں پہ لو نوٹ ہیں, اسی حساب سے آپ اپنا بزنس ڈرائیو جیسے کرتا ہے آپ کو اپنے ویسے.
تو اس کے لیے ایک اچھا انفارمیشن سسٹم ہونا بھی ضروری ہوگا.
دیکھیں یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جو مینیجر ہوتا تھا یا مالک ہوتا تھا یہ ٹوٹلی اس کا نالج ہوتا تھا کہ کون سی چیز کہاں سے مل رہی ہے, کیا بھاؤ ہے, کس منڈی میں پڑی ہے, کون سپلائر ہے, کب آئے گا, کیا پیسے دینے ہیں, لوگوں نے ہاتھ پہ رکھ کے لکھ کے پرچیاں لکھ کے رجسٹر مینٹین کیے ہوتے تھے. اب تو یہ بہت بڑی فیسلٹی مل گئی ہوئی ہے ہم لوگوں کو. اب یہ نئے نئے چھوٹے چھوٹے شاپس کے لیے نئے نئے سافٹ ویئر آ چکے ہیں,
پری ریٹن سافٹ ویئر
بالکل ہیں جی, ہر طرح سے. دیکھیں آپ کی یہ بڑا ایک آپ کو میں شاکنگ ہے کہ لوگ اس کو بڑا ایزی بزنس لے کے, جس کو کوئی بزنس نہیں آتا وہ یہ بزنس کر لیتا ہے, اور 5 سال کے بعد اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ناک تک وہ مقروض ہوا ہوا ہے. کیونکہ جب آپ نے شاپ کھولی ہے, آپ کسٹمر سرو کر رہے ہیں, آپ کے پیچھے آپ کو سرو کرنے والی کمپنیاں ہیں جو آپ کو مال دیتی ہیں, کہ آپ کہیں سے اچھے ریلیشن بن جاتے ہیں, وہ آپ کو کریڈٹ پہ مال دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا اگر پراپر اکاؤنٹنگ سسٹم نہیں ہے, آپ امیجن کریں آپ بیچتے جا رہے ہیں, گھر کا خرچہ اسی سیل سے نکالتے جا رہے ہیں, کرایہ دیتے جا رہے ہیں, جن کا پیسہ آپ نے دینا ان کو دے نہیں رہے. سب سے پہلے تو 1 سال کے اندر بندہ بالکل وہ بند کر جائے گا, کیونکہ کمپنی آپ کو دینا بند کر دیں گی فوراً ان کو اگر آپ پیسے نہیں دیں. یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے, جتنا ہی آپ کا امپورٹنٹ آپ کا کسٹمر ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کا پارٹنر ہے, یور پارٹنر از یور سپلائر, اس کا آپ کو خیال ہر صورت میں رکھنا پڑے گا. تو اس لیے یہ تو دیکھیں یہ ایک سائیکل ہے, آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے.
یہ جو مطلب یہ بھی ایک فنڈامنٹل ہو گیا کہ جو فنڈامنٹل چیزوں میں سے کہ آپ کے پاس ایک پراپر انوینٹری مینجمنٹ سسٹم ہو.
ڈیفینیٹلی,
اور یہ جو انوینٹری مینجمنٹ سسٹم ہوتے ہیں یہ سپلائی چین مینجمنٹ بھی اسی کے حوالے سے ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کیا اس سے اپنی اکاؤنٹس بھی اسی سے مینٹین کرتے ہیں سبھی کچھ.
جی یہ جو آپ کو آج کل پیکج مل رہے ہیں, ابھی تو ٹیکنالوجی کا دور ہے,
اس کے بارے میں بتائیے.
جی میں عرض کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑی بیکار ہیں, ہم نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے, جو پیسے آئے لے لیے بیچ دیے, اور ود ان منتھ 2 منتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, آپ کو کس کتنے پیسے دینے ہیں. یا آپ کو اکثر ملیں گے چھوٹے چھوٹے بزنس مین جو ان چیزوں کو نہ سیکھتے ہیں نہ ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے اکاؤنٹنگ سسٹم کے اوپر انویسٹ نہ کرنا یا اس کو نہ سیکھنا.
مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں بازار سے جاؤں گا ایک 10 روپے کی سی ڈی لے لوں گا اس میں اکاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ کام نہیں چلے گا.
نہیں جی نہیں, لیس ادروائز آپ خود جانتے ہیں سمجھتے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی گھر والا بندہ, کوئی آپ کا بھائی بیٹا بیٹی, جو بھی آپ کے پاس اپنے جو ورک فورس ہے اس میں سے ایک آدھ بندہ ٹرینڈ ہونا چاہیے. اور دیکھیں یہ بڑی بڑی سپر مارکیٹس ہیں, کیسے ان کا نظام چل رہا ہے کہ ان کا ہیڈ آفس کیلیفورنیا میں ہے, آکلینڈ میں بیٹھا ہے سیف وے, पूरी दुनिया में उसकी ब्रांचेस हैं। तो वो सिस्टम किस सेट पे चल रहा है?
स्ट्रॉन्ग
मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। एक स्टोर के अंदर है, एक पैसा इधर से इधर नहीं हो सकता, एक बंदा पेप्सी नहीं वहां से पी सकता, इसलिए कि उनको एंड ऑफ द क्वार्टरली या मंथली या वीकली उनकी जो इन्वेंट्री होती है वो लोग रिस्पॉन्सिबल
है। ये कैश रजिस्टर तक कनेक्टेड होता है सॉफ्टवेयर
100% इन एंड आउट है ना जी,
इन एंड आउट है, इन से लेके आउट तक सब कनेक्टेड है।
जब आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हैं तो देखें आप जो रिसीव कर रहे हैं,
एक दरवाजे से माल आ रहा है,
हाँ जी
रजिस्टर
बिल्कुल आप देखें, फिर उसमें आप उसको कितना सोफिस्टिकेटेड बनाना चाहते हैं। अब ये कि टोटल जो भी मैंने सब्जी भी रिसीव कर ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, प्लान भी कर लिया, तो ये एक टोटल मेरी परचेज हो गई। तो ये एक तो ये तरीका होगा विच इज नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड। आप उसको डाइसेक्ट करते हैं कि भाई ये मेरी, मैंने देखना है कि मुझे वेजिटेबल मैं लेके आ रहा हूँ, इसमें मुझे क्या फायदा हो रहा है, तो उसका आप एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। जिस हिसाब से उसको रिसीव करते हैं उसी हिसाब से आपका कैश रजिस्टर जो है उसको आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपकी वेजिटेबल आज इतनी बिकी है, फ्रूट आपका ये बिका है, आपका मिल्क इतना बिका है, आपका जूस इतना बिका है।
सप्लाई चेन यही होती है
बिल्कुल, ये आपका जो फ्लो ऑफ है ना इन्फॉर्मेशन ऑफ योर इन्वेंटरी मैनेजमेंट का यही है कि जिस जैसे जैसे आएगा उसी तरह से ये जाएगा। ये बॉक्स है शॉप, एक पीछे दरवाजा है, एक बाहर दरवाजा है, जैसे अंदर आएगा उसी तरह से बाहर जाएगा। विद इन फोर वॉल्स क्या होता है
वो रिकॉर्ड करेगा,
वो बिल्कुल,
और इससे आप अपने नतीज निकालेंगे कि आया नुकसान में जा रहे हैं या फायदे में जा रहे हैं।
बिल्कुल।
टाइम थोड़ा सा कम है तारिक भाई, एक एरिया जो आपसे पूछना था जो कि डेफिनेटली आप पाकिस्तान में भी जिसका कानूनी तौर पे भी है वो है एक्सपायरी शेल्फ लाइफ।
बिल्कुल।
इसको कैसे मैनेज करते हैं, मतलब इसमें पहली तो बात है कि बिजनेस को क्या छूट मिलती है ऐसी कोई कि भाई अगर एक्सपायर होगी तो हम वापस ले लेंगे, या क्या चक्कर होता है ये सारा बताइएगा। मैं कैसे इंश्योर होऊंगा कि मैंने अगर एक चीज ले ली है जिसकी शेल्फ लाइफ एक साल है तो बट इफ के मैंने वो जो 2000 डब्बे खरीद लिए हैं वो 2000 डब्बे मेरे बिकते नहीं है 2 साल बाद, मेरा क्या बनेगा?
देखिए जी, ये बड़ा बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन आपने किया है। ये कुछ भी लोग कस्टमर जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई ये बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर का बना हुआ है और ये डेफिनेटली जो उसने जब बना के ये कैन में बंद किया ये अच्छा ही होगा। अगर ये नेस्ले का मिल्क है उसने हर तरह की इंश्योरिटी ली होगी तो दी होगी तो फिर जाके ये मैन्युफैक्चर हुआ है, इट्स अ गुड क्वालिटी मिल्क। लेकिन कस्टमर किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अगर एक दिन भी वो एक्सपायर हो गया, वो उसको ये उसका परसेप्शन है कि ये बिल्कुल जो है जहर बन गया है। तो
जो कि वैसे ऐसा हकीकत होता नहीं है, मतलब
नहीं
अगर
है।
एक दिन ऊपर गुजर जाए तो किसी
नहीं, नहीं,
एक दो चार दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये देखें हम तो कहते हैं नहीं है, लेकिन ये है कि ये अगेन इट्स वेरी टेक्निकल जो लैब
मतलब
है,
आप इसमें
स्टैंडर्ड
कैनॉट बेसिकली बी श्योर ऑफ इट,
यू कैनॉट बी, इट्स ऑलवेज बेस्ट
टू बी केयरफुल,
बिल्कुल बेटर टू बी केयरफुल। और देखा होगा आप लोग जो स्टॉक करते हैं घरों में माल लाते हैं वो ऐसे नहीं होता दूर से फिर आना जाने के, हर बड़े बड़े घरों में उन्होंने अपने स्टोर रूम खोले हुए हैं बनाए हुए हैं जिसमें वो सीरियल भी ले लिया, मिल्क भी ले लिया,
कैन
एक महीने का स्टॉक रखा हुआ है, तो वो तो एक एक पीस चेक करके लेते हैं।
अच्छा, तो
उसमें ये होता है कि ये जो स्टोर के अंदर होता है जी उसको हम कहते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब हम आप देखते हैं कि जब हम डिस्प्ले करते हैं कि जो आइटम आज रिसीव की है वो हमने पीछे लगानी है उस आइटम से जो हमने पिछले महीने रिसीव की है, तो जो पिछले महीने रिसीव वाली जो है वो कस्टमर ले जाएगा पहले, फिर वो इस तरह इसकी जो है तो ये रोटेशन होती रहती है। तो इसके ऊपर हम स्पेशल जो है वो अटेंशन देते हैं और देनी भी चाहिए कि आप जब माल लें उसको उस वक्त चेक करें कि उसकी कितनी एक्सपायरी है। अगेन आपका
अच्छा क्या इसमें, हाँ एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा निकलता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है कि आप कितना मार्जिन दें, मतलब एक प्रोडक्ट जब शुरू निकलती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से
जी जी
वहां से उसकी लाइफ स्टार्ट शुरू होती है 2 साल की,
बिल्कुल
आपके पास कब पहुंचे तो ठीक है, अगर कब कितनी उसमें मदद बाकी हो तो
जी
अच्छी बात है।
एज अ स्टैंडर्ड जी मैं अर्ज करता हूँ कि कम से कम 6 महीने होने चाहिए
मिनिमम
6 महीने से कम है तो रिसीव ना करें।
टोटल आउट ऑफ टोटल व्हाट लाइफ व्हाट एवर,
देखिए ये हर चीज की अलग है, जैसे कुछ चीजें हैं उनकी 1 साल है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जैसे चावल हो गया वो लटम पटम उसकी 2 साल भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी 1.5 साल है। तो ये तो जो स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं कंपनियां उन्होंने एक सेट किया हुआ है कि अगर ये इंग्रेडिएंट हो किसी प्रोडक्ट में तो उसकी शेल्फ लाइफ इतनी होगी, अगर ये हो तो इतनी होगी, ड्राइव प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल ज्यादा है,
लेकिन आपको एक एज रूल ऑफ थंब के 6 महीने कम से कम होने चाहिए।
ये
अनदर थिंग इज कि आपका अपना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको बताएगा कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट जल्दी निकलती है।
एक्सपायरी मैनेजमेंट आप अपने मैनुअल बनाए या आपका सिस्टम बताता है, कि अगर आपका अच्छा सिस्टम इन्वेंटरी मैनेजमेंट, उसमें ये होगा कि जब आप प्रोडक्ट रिसीव करते हैं तो वो कितना डिटेल में आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, मांगेगा पैक साइज, मांगेगा कॉस्ट देगा, रिटेल देगा, एक्सपायरी भी हो सकता है मांग ले। अगर आप उसमें फीड करते जाएं तो अगर आपके पास इतनी कह लें कि टीम में इतनी कैपेबिलिटी है कि इसको मेंटेन कर सकें इस इन्फॉर्मेशन को, तो उससे तो अच्छी चीज कोई नहीं। आप हर महीने रिपोर्ट निकाल के दे सकते हैं कि अभी कौन सी चीज एक्सपायर हो रही है। अगर नहीं है तो आप मैनुअली मेंटेन करें, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर आप कानून की गिरफ्त में बंदा आ जाता है, बलदिया के फाइंस हो जाते हैं,
इश्यूज हैं सर रिलेटेड।
डेफिनेटली आपका अच्छा, कस्टमर
लूप अब खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी से मुझे ये बताइए कि इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव बारकोडिंग फैसिलिटी?
देखें
उसका फायदा क्या है, मतलब
बारकोडिंग तो कमाल चीज हो जाती है ना जी उसमें, तो देखें इतनी जहां तक,
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी महंगी नहीं है, मुझे
महंगी नहीं है। और ये देखें
फायदा क्या इसका,
इसके बहुत फायदे हैं। इसमें प्रोडक्ट के जितना लाइफ साइकिल है ना आपके पास, उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है एक्सपायरी से लेके रिसीव ने खरीदने तक, कितनी बेची है, कौन कौन ले रहा है, कौन से कस्टमर ने ली है, जैसे जितना अभी तो हमारा बिजनेस बहुत टेक्निकल हो गया हुआ है, हमारी बहुत सारी बाइंग ऑनलाइन होती है। आप जितनी प्रमोशंस बनाते हैं आपको पता चल जाता है रात को हमने टिश्यू का डब्बा कितने पीसेस कौन से रंग का बिका है, आप उसको प्रमोट करना चाहेंगे या उसके साथ वाले को, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस यू कैन मेक बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। ये तो बहुत एडवांस हो गया
उसके साथ। मेरे ख्याल में बारकोड का जो एक फायदा मुझे नजर आता है वो चेकआउट पे भी आता है कि इट्स मच फास्टर,
बहुत सारा
एक्यूरेसी है,
इतना इसने तो रेवोल्यूशन एक पैदा कर दिया है। और ये मैं बता दूं कि ये ऐसी चीज हो गई है अभी नई सिचुएशन में, जो मैन्युफैक्चरर अपनी आइटम के ऊपर बारकोड नहीं देगा उसकी प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा।
अच्छा,
चाहे आपकी प्रोडक्ट कितनी भी जरूरी है अगर उसके ऊपर बारकोड नहीं है तो वो कोई शॉप के ऊपर नहीं खरीदेगा, और वो शॉपकीपर कोई अपने आप को ऊपर नहीं ला सकेगा जब तक कि वो ये एक बारकोड सिस्टम अपने रीडिंग सिस्टम अपने इंट्रोड्यूस नहीं करता अपने बिजनेस में।
तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है और जाने से पहले एक नगमा भी हम सुनेंगे, लेकिन मैं इन नटशेल आप इसको थोड़ा सा मैं रैप अप करता हूँ कि जो बातें हमें यहाँ पे पता चली हैं इस बिजनेस के हवाले से वो ये हैं कि नंबर वन, इट इज मैंडेटरी कि यू मस्ट हैव अ रिसर्च डन,
बिल्कुल
बहुत जरूरी है, और किसी प्रोफेशनल के साथ के हवाले से होने जरूरी है। अपने तौर पे गाड़ी लेके मत निकली है कि जी मैं माला फिर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
ये
आपको एक्सपर्ट्स की जिनके पास डेमोग्राफिक डाटा अवेलेबल है, जो मार्केट को समझते हैं, वो आपको पैसे जरूर चार्ज करेंगे, लेकिन दे विल हेल्प यू, दे विल बेसिकली एक डिजास्टियर सिचुएशन आपको उससे बचा सकते हैं।
बिल्कुल,
एक ये बड़ा जरूरी है। नंबर टू जो चीज मुझे नजर आई वो ये कि जिस वक्त आप एक मार्केट बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, उसकी एक खास परसेंटेज रखना बड़ा जरूरी है, एंड देन अगेन दैट इज बेस्ड ऑन योर रिसर्च एज वेल कि क्या यहाँ के लोग मछली ज्यादा खाते हैं जो मैं रख रहा हूँ।
बिल्कुल,
ठीक है जी, ये हो गया। फिर आपकी ये बातें भी बड़ी सेंस बनाती है जो कि है कि सपोर्टिंग द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कि जी आप अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हार्डवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बैकअप होने आपके पास जरूरी है, फिर उसकी एक प्रॉपर मेंटेनेंस करवाना जरूरी है। ये मत कीजिए कि अगर उसके बारे में कहा जाता है कि 6 महीने बाद एक टेक्नीशियन दूर चेक करेगा, आप ना करवाएंगे यार चल तो रहा है छोड़ो, पर जरूर है पैसे देने हैं, नहीं वो पैसे डालिए क्योंकि एंड ऑफ द डे कस्टमर विल पे फॉर इट, इट विल कम इन टू योर कॉस्ट एनी वे, सो डोंट थिंक इट्स एक्सपेंस टू यू, इट इज बेसिकली यू आर स्पेंडिंग नाउ बट यू विल बी रिकवरिंग इट फ्रॉम योर कस्टमर।
बिल्कुल,
ये हो गया। एंड टॉप ऑफ दैट यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम,
बिल्कुल,
जो कि इंक्लूड करता है आपकी स्टाफ मैनेजमेंट, आपकी अकाउंटेंसी, आपके पूरे फाइनेंस और आपकी पूरी की पूरी इन्वेंटरी।
जी हाँ,
इसको करेगा और इस पे वो इनसे लेकर के आउट तक आपको सपोर्ट करेगा, आपको ये कस्टमर के बिहेवियर भी बताएगा, आपको ये भी बताएगा कौन सी प्रोडक्ट आपकी कितने दिनों में बिकती हैं, आपको ये भी बताएगा कौन सी एक्सपायर होने वाली है और कौन सी एक्सपायर कल हो जाएंगी।
देन स्काई इज द लिमिट जी, वंस आपके पास।
और ये भी कि इसमें ये नहीं रिस्क लेना कि हमें किसी ने कहा कि यार मेरे पास एक बड़ी अच्छी सॉफ्टवेयर पड़ी है वो इस्तेमाल करो, नहीं, इसके लिए भी जरूरी होगा, मैं ये थोड़ा सा ऐड यहाँ पे करूंगा तारिक भाई
जी,
कि यहाँ पे अगर इफ यू कैन हायर अ कंसल्टेंट हु कैन गेट something right for you, right for your business, pay for that because you are going to pay it once.
Bilkul.
And then it's something worth having.
Bilkul.
ठीक है जी, ये भी हो गया. और आखिरी जो एक बात आपने की वो ये कही, जो कि दो बातें, एक तो ये कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करें तो be on top of it yourself.
Yeah,
do not leave it to others.
Bilkul.
Till you are expanded to a point where you really need to now work on something else. खुद गले पे बैठिए. और तीसरी जो आखिरी बात वो आपने कही वो ये कि बार कोड वाली अगर आप फैसिलिटी, क्योंकि जब आप एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम ले रहे हैं जो कि नॉर्मली आप सपोर्ट करते हैं बार कोडिंग सिस्टम को, रीडिंग को उसकी, तो वो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए. दैट मेक इट, दैट विल ट्रैक योर प्रोडक्ट, दैट्स नंबर वन. एंड सेकेंडली इट विल बेसिकली मेक द प्रोसेस मच फास्टर इन टर्म्स ऑफ चेकआउट के ऊपर. कि एक अगर चेकर जो होता है 10 आइटम्स पहले 2 मिनट में उसकी पैसे अकाउंट करता था, तो अब वो उन 2 मिनट के अंदर 50 आइटम क्या करेगा बिकॉज ऑफ द बार कोड.
बिल्कुल जी. आपको यह है कि सिर्फ उसके बाद ये होता है कि कैशियर देखे ना, अपन छोड़ के चले जाते हैं इधर उधर. बार कोडिंग मशीन है, उसने क्या करना है, उसने स्कैन करना है, पैसे लेने पैसे देने. आपको वो थ्रेट जो थी आपकी, वो मेरा बड़ा ट्रेन कैशियर था, मारा गया, मैं क्या करूँ, आपकी वो एक थ्रेट डिपेंडेबिलिटी जो है खत्म हो जाती.
ठीक तार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. कोई आखिरी बात आप सामीन से कहना चाहें? और सामीन यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके जहन में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो तारक भाई आपकी मेल्स के जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर होंगे. आप news@contactpakistan.com पे अपनी मेल्स या अपने क्वेश्चन लिखिए. तारक भाई विल बी देयर टू आंसर यू योर स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री ऑफ हाइपर मार्केट्स एंड सुपर मार्केट्स एंड सुपर बिजनेसेस. तारक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंद लफ्ज आपकी जानिब से, और उसके बारे में एक नकवा सुनेंगे और फिर चाय का कप
पीजिए. मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये एक अच्छी एक सीरीज शुरू की है, और मुझे उम्मीद है कि हम सब आपके इस प्रोग्राम को जो है उसी तरह का रिस्पॉन्स देंगे और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा और सीखने की कोशिश करेंगे. ये बड़ा अच्छा नॉलेज है. आप हर इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पढ़े हैं, आप उनको बुलाएं और हम उनसे अपने इल्म में इजाफा करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे. और आपका बड़ा शुक्रिया. और
बहुत बहुत शुक्रिया तारक भाई, अल्लाह आपको जजा दे, और इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होती रही. आइए नकवा सुनते हैं. नाज़रीन हमें आप इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.
जिंदाबाद.
फरियाद करोगे तुम भी, दिल जो टूटेगा तो फरियाद करोगे तुम भी, हम ना होंगे तो हमें याद करोगे तुम भी. कुछ भी कहे रे कोई, कुछ भी कहे, तेरे बिना हम कैसे रहे. कुछ भी कहे रे कोई, कुछ भी कहे, तेरे बिना हम कैसे रहे. अब तू ही बता दर्द जुदाई कैसे सही. पछताना पड़ा, जो खता मैंने नहीं की उस पे पछताना पड़ा, बेवफाई तूने की और मुझको शर्माना पड़ा। डसने लगी बैरी डसने लगी, हाय तन्हाई बैरी डसने लगी, ओ डसने लगी बैरी डसने लगी, हाय तन्हाई बैरी डसने लगी।